ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया है। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी है, लेकिन इससे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और गलत सूचना के प्रसार जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के प्रति वरिष्ठ नागरिकों में जो उत्साह दिखा है वे बहुत संतोषजनक है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार उनके बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से इस सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया। संसद के दोनों सदनों में कल भी गतिरोध जारी रहा और लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर अमेरिका की एक प्रमुख फाउंडेशन के साथ कथित संबंध रखने का आरोप लगाया। दूसरी ओर विपक्षी सदस्यों ने एक प्रमुख भारतीय कारोबारी समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव की निंदा की है। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के सदन में रचनात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है और विपक्ष को दोनों सदनों के आसन का सम्मान करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल मॉस्को में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा आयोग सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले श्री सिंह ने मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री एंद्रे बेलोसोव के साथ सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता की और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की तकनीकों पर चर्चा की। इसराइल के लड़ाकू विमानों ने राजधानी दमिश्क सहित सीरिया के कई क्षेत्रों में हमले किए हैं। ब्रिटेन स्थित एक संस्थान ने कहा है कि पिछले दो दिनों में इसराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। इसराइल ने कहा है कि सीरिया से असद शासन खत्म होने के बाद हथियारों को विद्रोहियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। सीरिया में मोहम्मद अल बशीर को संक्रमणकालीन सरकार का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। श्री बशीर ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा कि वे राष्ट्रपति बशर अल असद को तीन दिन पहले अपदस्थ करने वाले पूर्व विद्रोहियों के समर्थन से अगले वर्ष 1 मार्च तक अंतरिम प्रशासन में प्रधानमंत्री रहेंगे। सीरिया में हाल के घटनाक्रम के बाद सरकार ने आज वहां के 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल हैं जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित लेबनान पहुंच गए हैं और अब उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से वे भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने का समन्वय दमिश्क और बेरूत स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा किया गया। सुरक्षा स्थिति के आकलन और सीरिया में भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद उन्हें वहां से निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हांगकांग में विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कल भारत ने इटली को 3-0 से हरा दिया। इस ग्रुप सी में भारत 3 में से 2 मैच जीतने के बाद 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। उधर पुरुष वर्ग में भारतीय टीम को कोलंबिया ने 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।